اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. گناہ کی معافی، درجات کی بلندی اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، یہ کثرت کیا مطلب؟ یہاں تو بتا دیں کثرت کے ساتھ درود پڑھی. کثرت کیا؟ جب پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مولا کثرت سے کیا مراد، تو آپ نے فرمایا کم سے کم 100 دفعہ، زیادہ زیادہ آپ کی مرضی، کتنی دفعہ پڑھی جیسی توفیق ہو آپ کو، جو آپ پڑھے کس کے لیے بھی پڑھے. پہلی کلاس ہے لیکن کیا ایک بہانہ مل گیا تو چلیے بتا دیتے. محمد آل محمد کا کلام، محمد آل محمد کی باتیں، محمد آل محمد کے ذریعے سے جو دین پھیلا گیا، اس پہ کوئی سی بات کہیں سے بھی شروع کیجیے، بات نکلتی ہی چلی جاتی ہے، سب نفع کی ہوتی ہے، سب فائدے کی ہوتی ہے. ایک تسبیح والدین کے لیے پڑھ کے ہدیہ کر دیے، ایک تسبیح اپنے عزیز رشتہ دار کے بچوں کے لیے، کہ جس کام کے لیے دل چاہے آپ کو ایک تسبیح پڑھیے اور ہدیہ کیجیے، اس کام کے لیے پروردگار سے دعا کیجیے کہ اس کے صدقے میں پروردگار یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا، اور نہیں بھی حل ہوگا تو بھی حل ہو گیا. وہ کیسے؟ ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی، ہم اس ایسے ہی بات کر رہے ہیں آپ سے. نہیں حل ہوگا تو بھی حل ہوگا کیا کیسے؟ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، اتنے میں ایک بت پرست آیا اور آ کے اس نے پوجا پاٹھ کی، جال ڈالا، نکالا، پورا جال بھرا ہوا تھا، ٹوکرے میں ڈال لیا. تین دفعہ اس نے جال ڈالا، تینوں دفعہ ٹوکرا بھر گیا، کندھے پہ رکھا، یہ جاؤ جا. اتنے میں ایک مسلمان آیا، جو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر بظاہر نہیں کوئی چیز پوری ہوتی غم نہ کریں، کیا ہونے والا سنیے ابھی کیا ہونے والا. مسلمان آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ رسول کا نام لیا، دعا کی، جال ڈالا، کچھ نہیں نکلا. دوسرا ڈالا، وہ بھی کچھ نہیں نکلا. تیسرا جال ڈالا، ایک مچھلی آئی، اس نے شکر بھیجا، کندھے میں رکھا، چلا گیا. ارے موسیٰ کہہ رہے پرور دکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے تیرا نام بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، کفریہ جملے اس نے کہے اور اس کو بھر بھر کے ملا. یہ بیچارہ نماز بھی پڑھی اس نے، ذکر بھی کیا تیرا، سب کچھ کیا، اسے کچھ نہیں ملا، ایک ملا. کہہ رہے موسیٰ ذرا بائیں طرف تو دیکھو. جب انہوں نے بائیں طرف دیکھا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو عذاب دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کے لیے جس کے ٹوکرے بھرے ہوئے تھے. اس کے ٹوکرے بھر جانے سے اس عذاب میں کمی واقع نہیں ہوگی. اور اس کے ادھر دیکھو، دائنی طرف دیکھا تو جنت کے باغات اور ساری نعمتیں، ساری چیز دیکھی. کہ یہ کیا کہ اس کی کمی سے، دنیا کی کمی سے جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. تو اگر کوئی چیز کبھی اتفاق سے کچھ ایسا ہو جائے تو غمزدہ نہ ہوئیے، کیونکہ آپ محمد آل محمد کی ماننے والیاں ہیں. ہر حال میں آپ کو نفع ملے گا، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہے. بہرحال ابھی تو آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو استقامت دے آنے کی، اور اس کے ثواب آپ کے والدین کو بھی ملے. کیوں اس کا ثواب والدین کو ملے؟ اتنی بڑی یہ نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس کی ساری چیزیں بتانا شروع کر دے تو آدمی کو یقین نہیں پیدا ہوتا کہ اتنی بڑی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی. کیا آپ نے کبھی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوگا؟ بہت ساری بچیاں ہوں گی، ان کے گھر والے ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو کیا چانسلر نے کبھی آ کے مبارک دیا، آئی تشریف لائی، تشریف لائی، کبھی کہا؟ نہیں کہا. کالج کے اندر، اسکول کے اندر پرنسپل آتا کہنے کے لیے؟ یہاں کیا ہو رہا؟ جب آپ گھر سے باہر نکلی ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تو پروردگار کہتا مرحبا اے میرے بندے، मर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये परवरदिगार खालिक दुनिया का खालिक है ना, पहले उससे पहले कोई चीज़ थी ना उसके बाद कोई चीज़ रहेगी, वो परवरदिगार अर्श अजीम का मालिक। वो कह रहा मरहबा ए मेरे बंदे, क्या तुझे खबर है कि दूसरे किस बुलंदी का इरादा किया है, किस बुलंदी का इरादा किया है? आपको पता ही नहीं, यहाँ आई हैं आगे बढ़ के चली जाएंगी, निकलती नहीं करती कुछ भी नहीं। जो बग़ैर देखे अल्लाह पे ईमान लेता है उसके लिए बड़ा अजर सवाब है। तो जो बग़ैर देखे मोहम्मद आले मोहम्मद की बात या अल्लाह की बात या रसूल की बात मान लेता है तो उसका बहुत बड़ा अजर है। बस शर्त यह है कि तौफीक की भीख मांगिए कि परवरदिगार यकीन पैदा कर दे, क्योंकि यकीन नहीं तो फिर कुछ मसला हल नहीं होने वाला। सुनिएगा, इधर से सुना इधर से निकल गया ख़त्म। एक आदमी बिलावजह, ये सब हम बता रहे हैं पहली क्लास, वो कहेंगे अपनी पहली क्लास पर ही बिलावजह करें बिल, आज याद आता जा रहा है। एक बंदा आया कि मौला मेरा हाथ दिए, वो हो गया कट गया मौला से, मौला ने कुछ पढ़ा उसका हाथ रखा, कुछ पढ़ा पढ़ के फूंक दिया, वो हाथ जुड़ गया, वो हाथ जुड़ गया, वो चला थोड़ी दूर तक गया वापस पलट के फिर आया। कह मौला आपने क्या चीज़ पढ़ी? कि तुम्हारा हाथ जुड़ गया जाओ काम करो अपना। कह नहीं मौला, मौला बताइए पढ़ी क्या चीज़ आप? बहुत जब जिद किया, कहा मैंने कुलबल्ला हाथ पढ़ा था। तो उसने कहा अरे, वो जैसे अरे कहा वो हाथ फिर गिर गया। मसला यकीन का, यकीन का मसला होना चाहिए। अगर कुछ कह रहे हैं तो मान जाओ उसको, अगर दुनिया में तुम्हारा फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं हो तो याद रखना आखिरत में बहुत पछताओगे। ये आजकल यही हो रहा है, आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, यूनिवर्सिटी में चली जाए, डॉक्टर पढ़ ले, इंजीनियर पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, बड़ी आपकी वाह 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 है, लेकिन इधर आइएगा कोई वाह वाह नहीं करेगा। तो देखा ये देखो मदरसे जाती है, तरह तरह की बातें आपके खिलाफ बनाई जाएंगी। आप तो मदरसे में हैं पढ़ाते हैं, आप तो ये कर रहे हैं भाई, बहुत ताने तिशने मिले। फूल आने थे मगर बदले में पत्थर आए। अल्लाह अकबर, करबला वाली जो औरतें जा रही थी हर जगह से, जहाँ जहाँ से काफिला गुजरता था लोग पत्थर मारते थे। अल्लाह अकबर, इनके ऊपर तो फूल आने चाहिए थे, इनकी सवारी की पैर की खाक उठा के सर पर लगानी चाहिए थी। ये वो लोग थे नहीं हैं, आज भी हैं, ये वही लोग हैं। फिलहाल नज़रों से हमारी गायब है लेकिन हैं वही लोग। बहरहाल हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करना है? शुरू करते हैं कि कहते हैं मरहबा ए मेरे बंदे, अर्श से निदा देता मरहबा ए मेरे बंदे, क्या तुझे खबर है, तुझे मालूम है कि किस बुलंदी हासिल करने का तूने इरादा किया, तूने जिस मंजिल को हासिल करने का इरादा किया था, क्या तू मुकर्रब फरिश्तों की हमसरी चाहता है? तो हाँ मैं तुझे उस तक पहुँचा दूँगा। कौन कह रहा? परवरदिगार। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए कह रहा। आप जब घर से निकली थी तो क्या आपने कभी देखा था यूनिवर्सिटी कॉलेज? देखिए बताना इसका ज़रूर, यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं जाने के बाद क्या आपके रास्ते में रेड कारपेट बिछाया गया था? बिछता है लेकिन ऑस्कर अवार्ड जब होता फहाशी वाले काम में, ऑस्कर अवार्ड जो हो रहा होता है, अवार्ड दिया जा रहा फिल्मों को एक्ट्रेसों को, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछता, क्योंकि वो बदमाश लोग होते हैं ना, ये दुनिया उन्हीं की है, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछता। आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा लेकिन बिछता है। फिर वो कैसे? कि जब आप घर से निकलती हैं तो फरिश्ते खुश होकर आपकी राहों में अपने पर बिछा देते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। कहीं दिखाई देता, कहीं कैसे? कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया काफ़ी, पता आपने जोड़ दिया काफ़ी, अब हम कुछ नहीं पूछेंगे कैसे जोड़ा कैसे नहीं जोड़ा, जो आपने कह दिया काफ़ी हमारे लिए। मीसम जो थे पानी दे रहे थे पेड़ में, क्यों भाई? मेरे मौला ने कहा मैं इस पे सूली पे दिया जाऊँ इसलिए मैं पानी दे रहा हूँ, कहीं सूख ना जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कह रहे कहीं सूख ना जाए। मेरे मौला ने कहा कि इस पर मुझे फांसी दी जाएगी। हमारे आप जैसे लोग होते भाग जाते वहाँ से, जैसे मुझे शक्कर कहीं और पहुँचा दो या पेड़ काट के फेंक देते रात में आके, वो पानी दे रहे हैं। यकीन, यकीन पैदा कीजिए ताकि सारी चीज़ें आपकी हल होती चली जाएँ। कोई सारा मसला यकीन का है, तो बहरहाल यकीन का सारा मसला। एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो आया आके कहने लगा ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, कोई अमल बताइए। तो आपने कहा कि इल्म हासिल करो। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के बताइए कोई अमल बताइए, मुझे कोई अच्छा सा अमल बताइए। आपने कहा जाओ इल्म हासिल करो। फिर पूछा तीसरी बार भी आपने यही कहा कि जाओ इल्म हासिल करो। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे अमल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप मुझे इल्म बता रहे हैं। कह रहे जब इल्म होगा तो कलील अमल भी कसीर होगा, वो भी कबूल हो जाएगा। जब इल्म ही नहीं होगा तो करते रहो कोल्हू के बैल के तरह एक जगह चक्कर लगाते रहोगे। जैसे मौला मुश्किल कुशा हजरत अली इस्लाम नहीं कहते बगैर इल्म और जुहद के इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना है। कोई चीज़ आपको सख्त लगे कोई वैसी लगे तो पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। यहाँ समझाया जाता है बताया जाता है, अमल के लिए एजुकेट किया जाता है कि आपको अमल करें। सारा मसला अमल का है, ज़बानी गुफ्तगू से कुछ नहीं होता। तो ज़रा भी मत हेजिटेट होइएगा, ज़रा भी मत झिझकिएगा, जो होगा सब पूछ लीजिएगा। हमारी पुरानी बच्चियाँ उनसे पूछेगा वो बता देंगे आप कितनी चीज़ें। तो कह रहे हैं कि बगैर इल्म और जुहद, अगर इल्म नहीं है जुहद यानी तकवा नहीं है गुनाहों से बचन नहीं, तो इबादत कर रही सिर्फ जिस्म को थका रही है। जिस्म थक रहा आपका, आप कह रही हैं मैं नमाज पढ़ रही हूँ उसको गीबतें भी कर रही हैं आप, नमाज तो गई आपकी। जो शख्स एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहता है वो अपने लिए क्या काम करता है कि जन्नत में अपने लिए बाग बाग बनाता है ना, जन्नत में बाग बनाता है। एक साहब ही बैठे हुए देखिए सब ये सब क्या चीज़ है, ये वो वाक़यात हुए हैं जो आपके लिए नकल कर दिए गए किताबों में आ गए कि आप तक बात पहुंच जाए ताकि आप होशियार हो जाइए। क्योंकि आप 124,000 अंबिया प्लस 14 मासूमीन के मानने वाले हैं, तो आपको बहुत होशियार आप बहुत होशियार होंगी। अगर उनको वाकई मानती होंगी तो आप ज़्यादा होशियार कोई होगा नहीं। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर तो हमारे बहुत ज़्यादा बागों के, हाँ बशर्ते कि तुम जला न दो उसे। फिर क्या मतलब कि जब तुम कोई गुनाह करते हो तो एक शोला जाता है जो तुम्हारे इस बाग को जला देता है। अब समझ में आए मौला का कौल, बग़ैर इल्म और ज़ुहद की इबादत जिस्म को थकाना है। तुम सिर्फ जिस्म को थका रहे हो, तुमको मिल मिला कुछ भी नहीं रहा, कुछ जो तुम्हें मिल रहा है वो सब जला रहे हो तुम। आई समझ में? वो हमारे इल्म का कितना इतना शौक़ इतना शौक़ इतना इल्म है कि इल्म लदुन्नी के मालिक कौन, यही लोग। इनसे ज़्यादा इल्म किसी के पास था ही नहीं, इनसे ज़्यादा इल्म तो किसी के पास नहीं था। जब आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर के बारे में सुनती हैं पढ़ती हैं ये सुनती हैं, पहले अगर पढ़ती नहीं तो सुनी लीजिए, अब आप पढ़िएगा इंशाल्लाह। अब आप यहाँ आइए आप देखिएगा, मैं आपको शौक़ दिलाऊँगा आप जब पढ़िएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर की क्या बात है, बात यह है कि हुदहुद जो था कहाँ है हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, फिर उड़ता हुआ आया। कुरान में तस्करा है इसका, जो शख्स अमर बिल मारूफ करता है, ये चींटी हो या हुदहुद हो या जानवर हो या परिंदा हो, उसकी अजमत इतनी बुलंद होती है। नेकी की दावत देना बुराई से रोकना इतनी बड़ी चीज़ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि पूरी करबला इसी के लिए बर्पा हुई थी। और बस वही नहीं होता, नेकी की दावत नहीं दिया जाता, बुराई से रोका जाता, एक कहानी सुना के मामला ख़त्म कर दिया जाता। बहुत ज़्यादा शदीद तरीन शिकवा मुझको, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं जाकिर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर नहीं सकता, मजबूर हूँ, सिर्फ दांत पीस सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी भी आप शौक़ से हज़रत अली असगर अली साहब की शहादत का तस्करा करें, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हुआ ये अमर बिलमारूफ नए मुनकर के लिए। बहरहाल वो हुदूद आया, कुरान में तस्करा उसका, क्यों आया? उसने कहा कि बल्कि सभा जो है वहाँ पर सूरज की परस्तिश करती, कोई किसी को भेजिए कि जाके उसको ले के आए। अमर बिलमारूफ था, आप भेजिए किसी को ले गए। तो हज़रत सुलेमान ने देखा अपने दरबार की तरफ, वो कहने लगे कि कोई है जो जाके इसको लेके आएगा? तो एक जो वहाँ पे जिन था उसने कहा कि अभी आपकी ये महफिल बर्खास्त नहीं होगी कि मैं उसको ले आऊँगा। इस पर उनके वज़ीर आसिफ बरखिया ने कहा कि अभी आपने हुक्म दिया, अभी मैं पलंग झपकते में बिलकीस का तक बमे बिलकीस के ले आऊँगा, और वो ले आया, वो ले भी आया पलंग झपकते हुए। फिर वजह बताई उसकी, वही वजह बताने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। फिर वजह बताई कि मुझे अल्लाह की किताब का थोड़ा सा इल्म है, जिसकी वजह से मैं पलंग झपकते हुए ले आऊँगा, वो ले आया। तो जिनको अल्लाह की किताब का पूरा इल्म है मोहम्मद आले मोहम्मद, वो अगर कोई बात इनको तो पूरा इल्म है, वो अगर कोई बात आपको बताएं तो आप दुआ कीजिए कि मैंने बात तो सुन ली है, परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं इस पर अमल भी करूं, है ना। सुनने के बाद बार बार अपने वो चीज़ दोहराइए, रिपीट कीजिए बार बार, उससे क्या होगा, मुझे तौफीक दे कि मैं इस पर अमल भी करूं, तो इस पर अमल होगा। बहरहाल अब बता रही इल्म की बात आई तो उसी में बताने जा रहा हूँ। कुछ यहूदी थे जो राहिब, वो निकले, निकलने के बाद मदीने आए, उन्होंने कहा कि आओ चले अली का इम्तहान लेते हैं, ये इम्तहान लेंगे अली का इम्तहान लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं, हम सब के सब एक ही सवाल है अली से पूछेंगे, अलग अलग, देखिए अली क्या सबका जवाब एक देते हैं या अलग अलग देते हैं। अगर एक जवाब देते हैं तो इसका मतलब अली का इल्म जो है नऊज़ बिल्लाह, उसने जो कुछ कहा वो नहीं कहूँगा, मतलब पूरा नहीं। आए वो राहिब, आए आने के बाद उन्होंने कहा कि इल्म बेहतर है या माल, इल्म बेहतर है कि माल, इल्म अंबिया की मीरास है, माल फिरौन की, ये जवाब दिया मौलान, इल्म जो है अंबिया की मीरास है और माल फिरौन की, हम सब उसी में मर रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया सब उसी की है। रसूलल्लाह ने आखिरी ज़माने की जो पेशिन गोइयाँ बताई थी उसमें से एक बात ये भी बताई थी, याद रखा कि ज़बानी याद कर लिए याद हो जाए, कलाम है ना किसका, जिससे आप इश्क करते हैं, आशिक की एक एक चीज़ नोट की जाती है, उसकी आँखों में ऐसी थी, ये चीज़ नोट की, ये क्यों नहीं नोट है, ये असल तो ये है जिनसे हमें इश्क करना है, और जिनसे हमें इश्क है हमने उसको फरामोश किया हुआ, कैसे फरामोश किया हुआ, ऐसे फरामोश किया हुआ कि पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अपनी अज़मत का दरख्त देखिए कि आपकी क्या अज़मत है, और आपने उसको, हमने उसको, आपने सिर्फ आपने, आपने हमने उसको कहाँ, अपने आप को गिरा के कहाँ तक पहुँचा दिया, वो पत्थर खा रहे थे लेकिन कोई ख़िलाफ़ शरीयत कोई बात नहीं कर रहे थे, जबकि उनकी मंजिलत कितनी 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 हमारी तो नहीं, लेकिन जो मंजिलत है वो बताने जा रहे हैं आपको। पाँचवें इमाम कहते हैं तुम्हारे दिल में जो हम अहले बैत की मोहब्बत है तुम क्या समझते हो, इसके कारसाज तुम हो, इसका कारसाज अल्लाह ताला है, ये तुम्हारी फजीलत है, ये कारसाज अल्लाह ताला कारसाज है कि उसने हमारे दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत रखी है, अब उसको आप गुनाहों से घटाइए या बढ़ाइए नेकी करके, तो नेकी करके बढ़ाइए ताकि उनकी एक एक बात याद रहे आपको, समझ रही हैं आप, ताकि उनकी एक एक बात आपको याद। तो वो आके उसने पूछा, पूछने के बाद कहने लगा कि सब सार का जवाब एक होना चाहिए, एक जवाब होना चाहिए, क्या राहिब ने पूछा कि माल बेहतर है या इल्म, तो माल का जमा करना बेहतर है या इल्म का, आपने फरमाया इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म खर्च करने से क्या होता है, बढ़ता है जबकि माल घट जाता है, पहला जवाब। फिर दूसरा जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि माल बेहतर है या इल्म बेहतर है, जमा करना बेहतर, आपने कहा इल्म क्योंकि इल्म तेरी हिफाजत करता है और माल की तू हिफाजत करता है, कितनी अच्छी बात है, इल्म हमारी हिफाजत करता है, कैसे, क्योंकि आपकी जब मालूमात हो जाएगी बहुत सारी चीज़ आपको मालूम होगी तो उसके जरिए से आप अपने आप को बचाइएगा, अपने आप को बचा लीजिएगा, जबकि माल की हर वक्त आपको हिफाजत करने लगे, गनमैन रखना पड़ेगा वो आप ही को मार के माल लूट के चला जाएगा, हो गया गनमैन। फिर वो पूछता है तीसरा आता है इल्म बेहतर है या माल का जमा करना, आपने कहा इल्म इसलिए कि उससे तवाज़ो इंकसारी बढ़ती है और माल जो है तकब्बुर पैदा करते हैं, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। तीसरे का जवाब हो गया, अब चौथे का जवाब क्या, वो कहता है कि इल्म जमा करना बेहतर है या माल, तो आपने फरमाया कि इल्म जमा करने से दोस्त बढ़ते हैं जबकि माल जमा करने से दुश्मन में इजाफा होता है, हसद बोझ अदावत ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास, ये वो जहाँ से भी आ रहा हो। रसूलल्लाह की एक बात याद आ रही थी माल के सिलसिले में, मैंने कहा याद रखिएगा, वो याद रखे पहुँचते कहाँ तक पहुँच गया, ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बताओ, क्या है वो बात, क्यों नहीं याद है, कौन सी बात अभी बता रहे, या हमारी वो बच्चियाँ जिनको हम ऐसे ही डांटते हैं कि जैसे घर में अपने बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमारी वैसे ही बच्चियाँ हैं, आप बहनें हमारी। तो रसूलुल्लाह से जब किसी ने आखिरी ज़माने की पेशन गोई पूछा तो उसमें वो कह रहे थे लोगों की सूरतें तो इंसानों की चीज़ होंगी मगर उसके दिल उनके शैतान के से होगी। याद आया, दिल शैतान के से होंगे, लोगों का खून बहाएंगे और बाज ना आएंगे। बिदत उनके नज़दीक सुन्नत होगी, सुन्नत बिदत करार पाएगी। तो सहाबियों ने पूछा, अब यहाँ यहाँ पर आपकी बात आपको बार बार सहाबियों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वो लोग बुतपरस्त होंगे? तो आपने फरमाया हाँ, दिरहम और दीनार उनके नज़दीक मिसले बुत होगा। आज देखिए दिरहम और दीनार के वक़्त है, सारी वक्त अजीज़ करीबी रिश्तेदार, बहुत ही करीबी रिश्ता, बहुत ही करीबी रिश्ता सब होते हैं, दिरहम और दीनार की इज्जत करते हैं, उससे करीब होते हैं। आप उसको देख के दिल महसूस थी काश मेरे पास दो थे। आपके पास इखलाक हो, आपके पास इल्म हो, तो फिर बेनियाजी पैदा होती। हम अल्लाह की मोहब्बत में गर्क, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए, हमें मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो यूसुफ का हुस्न देख के उंगलियां कट गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। यहाँ इतने इतने यूसुफ पड़े हुए, इतने सारे यूसुफ हैं कि उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में किसी चीज़ में हमारा कोई फ़र्क नहीं पैदा हो रहा कि हमें कोई वो नहीं। हमारे अंदर जो सीने के अंदर जो चीज़ है, कीमती चीज़ है जिसको अल्लाह ताला, इसका कारसाज अल्लाह ताला, जो सीने में चीज़ है उसकी कोई वक़्त हो सकती है कि उसके मुकाबले में आप किसी और चीज़ को तरजीह दीजिए? आया आगे कहने लगा मौला छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि इतनी जल्दी जल्दी बोले, तेज़ बोल रहे हैं ना। रिपीट वो भी अच्छे, चलिए अब धीरे 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 बोलते हैं, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था इतनी तेज़ बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कहेंगे अल्लाह तो सब ख़त्म हो गया, अब क्या करें, ये ना हो जाए कहीं हमारे साथ। ठीक है ठीक है, वो राही वाला पहले ये सुन लीजिए कि क्या सुना रहे थे हम। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना दे, फिर अभी आपको अब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे। वो आया आगे कहने का मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरी इमदाद कीजिए। तो कहने क्या तू गरीब है? कहने हाँ मौला मैं गरीब हूँ। यानी पहाड़ देख रहा है? हाँ मौला देख रहा हूँ। जब मैं इसको सोने का किए देता हूँ और तुझे दे देता हूँ, मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे। कहने मौला ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते हम, आप अपने दिल में रख के सोचिए क्या कर सकते। बोला ये नहीं हो सकता। कह फिर तू कहाँ गरीब है? सोने का पहाड़ पहाड़ दिया जा रहा है। कहा ये ले ले मेरी मोहब्बत को निकाल दे। कहने बोला ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया भी सोने की बना के दे दी जाएगी तो ये नहीं कर सकते। क्या फिर तू कहाँ गरीब है? फिर उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ थी उसे दे देगा गरीब अपने मत को। मतलब ये कि हमारे मानने वाले गरीब कहाँ होते हैं? तुम जन्नत के लिए पैदा किया होगा, जन्नत तुम्हारे लिए पैदा की गई, तो तुम गरीब कहाँ से हो? कोई ला के पैसा दे के जन्नत खरीद के तो दिखाए ज़रा, नहीं खरीद सकता ना। वो छठे इमाम कहे तुम जन्नत के लिए पैदा किए हो, जन्नत तुम्हारे लिए पैदा की गई। जब किसी ने पूछा था फिर वही आ रहा, अभी वो निकलता जा रहा, आपकी बात नहीं आ रही, बात से बात आ रही। अब इसके बाद ज़रूर बताएंगे आपको क्या क्या बोला। दुआ कीजिए कि हम जन्नत में चले जाएँ। कर तू जन्नत में तो है? कर वो कैसे मौला? कर कह रहे दिल में क्या हम अहले बैत की मोहब्बत है? कहें हाँ है। कर तू जन्नत दुनिया में होगा तब भी तू जन्नत में, आखिरत में आएगा तो भी जन्नत में। बस बस दुआ कर कि कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो कि तू निकाल दिया जाए वहाँ से। यानी कोई ऐसा काम ना कीजिए जो खिलाफ शरीयत हो, खिलाफ शरीयत काम ना कीजिए। इसमें बहुत लज्जत है, बहुत मज़ा है, इनके जिक्र में मज़ा है, इनके गम में मज़ा है, उसमें भी रोना जो होती गिरिया करती है, इसमें एक लज्जत है कि उसके बगैर जब कहा जाता है कि मुहर्रम ख़त्म हो रहा है अलविदा, किस दिल से कहें अलविदा? ये रस्म है जो अलविदा कही जा रही, वरना इनकी मोहब्बत ख़त्म कब होती है, जाती कब है? जिक्र जब होता है तो आंसू तो आ ही जाते हैं, इसकी निशानी है। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अली। उन लोगों ने कहा कि हम लोग चल के मौला से सवाल करते, मौला क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं हमारे मौला के पास आया, कहने लगे सवाल करते हैं इनसे चल के, एक सवाल करेंगे सब चार के चारों एक ही तरह का सवाल पूछेंगे, देखें कि क्या अली जो है सबको अलग अलग जवाब देते हैं, एक ही तरह का जवाब देते हैं। अली से सवाल करने आए थे, जब आँख खुली थी हज़रत अली इस्लाम पैदा हुए थे तो आँख उन्होंने रसूलुल्लाह की गोद में खोली थी, तो रसूलुल्लाह ने कहा पढ़ो अल्लाह अकबर, वो भी जानते थे पढ़ रहे, कोई आज कोई बच्चे जैसे बच्चा पैदा पढ़ो बेटा क्या होगा, पीछे से खड़ा होगा उसको दादा जो हाथ मारेगा क्या पागल हो गया, अजान दो अजान अकामत दो, पढ़ा क्या रहे इसको, वो कह रहे पढ़ो, कह क्या पढ़ूँ, तौरात पढ़ूँ, इंजील पढ़ूँ, जबूर पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ मैं, सूरह मोमिन की वो आयत पढ़ी थी, आज मोमिनीन फला पा गए जो नमाज में खुशू करते हैं, खुशू खुशू एक आयतुल्लाह दस्तगैब की किताब है, खाशईन की नमाज, पतली सी किताब है, अच्छी किताब है, खूबसूरत किताब है, पढ़िएगा लज्जत आएगी मज़ा आएगा, खाशईन की नमाज, नमाज ये खुशू करने वालों की नमाज कैसी होती है, खुशू करने वालों, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी किताब, काश कुछ ऐसी सबील निकले कि हम बटवा भी दें खरीद, वाकई बहरहाल चलिए आपका मसला हल करते हैं वरना। तो राहिब आए आके कहने लगे कि सवाल पूछते, एक ही सवाल पूछते, तो उन लोगों ने सवाल किया कि अगर नाकिस जवाब देंगे तो समझ जाएंगे कि इनको एक ही जवाब आता, इल्म इनका पूरा नहीं है, माल जमा करना बेहतर है या इल्म का जमा करना बेहतर है, तो आपने फरमाया इल्म का हासिल करना, क्योंकि खर्च करने से माल कम हो जाता है जबकि इल्म बढ़ता है, इसलिए इल्म का हासिल करना है माल के जमा करने हासिल करने से। फिर दूसरा सवाल राहिब ने पूछा कि इल्म का जमा करना बेहतर है या माल का जमा करना बेहतर है, तो आपने फरमाया माल इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म तेज़ी की तेरी हिफाजत करता और माल की तू हिफाजत करता, दूसरा जवाब ये दिया। तीसरा जवाब उसी एक सवाल सब पूछ रहे हैं आगे, फिर तीसरा जवाब दिया इल्म बेहतर है क्योंकि जिसने इल्म हासिल किया उसने उसमें तवाज़ो पैदा होती है और माल जो होता है वो तकब्बुर पैदा कराता है, गुरूर। फिर आखिरी ने आके यही सवाल पूछा तो आपने कहा कि इल्म बेहतर है, इसके इल्म को जमा किया गया तो दोस्त इल्म अगर है तो उससे दोस्त बढ़ते हैं, चलो कोई बात पूछ लेंगे से ये बताएगा दोस्त बढ़ते हैं, क्योंकि माल की वजह से क्या होता है दुश्मन बढ़ जाते हैं, हसद करते हैं बुस करते हैं, तो एक ही बात मुझे ये अभी 10 सवाल एक ही सवाल के जवाब अलग से भी मैंने एक जगह देखा, मैंने कहा यहाँ भी तो वही लिखा, उन्होंने पूछा तो नहीं लेकिन यहाँ भी लिखा मौला मुश्किल हज़रत इस्लाम फरमाते हैं ये अलग से निकाला मैंने, क्यों है एक ही तरह का, लेकिन वो चार सवाल पूछ रहे थे चार जवाब अलग अलग दे दिया, अब ज़रा यहाँ देखिए जवाब वही चीज़ यहाँ भी है, फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है और माल जो है फिरौन की, अगर कोई पूछ ले कि इल्म बेहतर है माल तो देखिए ये बता रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि माल जब माल को खर्च किया जाए तो घटता है जबकि इल्म जो है बढ़ता है, ये भी वही जवाब, माल की हिफाजत तुझे करना पड़ता है जबकि इल्म तेरी हिफाजत करता है, इल्म अल्लाहु अकबर शायद ये दिल को लग जाए, मेरे दिल को यही लगता सबसे ज़्यादा, इल्म कफन में दाखिल होकर इंसान का कब्र के अंदर साथ देता है, माल पीछे रह जाता है, क्या समझे कोई नहीं जाता ना बच्चा, अभी एक हदीस और सुनाते हैं रसूलुल्लाह की, ना बच्चा जाता है ना माँ बाप जाते हैं ना कोई भी नहीं जाता, इल्म जाता है कफन में साथ साथ जाता है, इल्म माल सब यहीं रह जाता सारा, इल्म जाता कफन में साथ जाता है माल, सुभान अल्लाह इस पर भी थोड़ी सी बात करनी थी, देखिए बीच में आ गया, इल्म माल मोमिन और काफिर दोनों हासिल करते हैं, कोई सवाल आएगा तो फौरन पूछ लिया कीजिए, पूछ लेते थे उस ज़माने के लोग जो थे गो के नए नए परस्तीज थे मुसलमान की तरफ आए थे, लेकिन जैसे ही कोई सवाल ऐसा होता था कि जो उनकी समझ में नहीं आते फौरन पूछते थे अल्लाह के रसूल इसके क्या मतलब, हमारे यहाँ कोई भी बात बताए पूछते ही नहीं मतलब, एक सवाल आपको पूछना, इससे इल्म से तवाज़ो इंकसारी आदि। एक हदीस हमने बहुत पहले पढ़ी थी एक दफ़ा, कि खातून थी इनको कहीं छोड़ने के लिए जाना था, पता नहीं कि आप चली जाई छोड़ आई जा रहे थे, तो हमने नई नई हदीस पढ़ी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा लाओ इनको सुनाते हैं, मौका इस वक्त अच्छा है इनको सुनाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई शख्स पैदाइश के दिन से लेकर बूढ़ा हो के मुँह के बल अल्लाह के इताअत में घसीटा जाए, फिर भी जब क़यामत बरपा होगी तो वह अपने अमाल को हकीर जानेगा और चाहेगा दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि और अमल करें। क्योंकि जन्नत जो 20 रुपये की थोड़ी मिलेगी, 20,000 की मिलेगा। जन्नत की कीमत पता है, जन्नत की कीमत क्या है? तो बहरा यह हदीस मैंने सुनाया, इतने साइड से गाड़ी के साइड से खीरे वाले का ठेला जा रखे, कितने अच्छे अच्छे खीरे रखे हुए। जब मैं समझ रहा था मैंने ये हदीस सुनाई, इसका कोई कुछ तो कहेंगी, कुछ तो सुनेगी, इसका क्या मतलब? तो वजह हदीस सुनने के कितने अच्छे खीरे रखे हुए। जी में तो आया कि छोड़िए क्या जी में हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये वहाँ पर जा रही हो तुम, याद रखना खीरे ला के दो इसको। तो बहरहाल इसी तरह, लेकिन उस जमाने के जी सुभान अल्लाह, इसी खुशगुमान है कि आपके लिए खीरे मंगवा रहे हूँ। वो तो पूछते थे, एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को अपना दुश्मन जानता है जो ईमान नहीं रखता। ठीक है, बहाने बहाने क्या चीज़ आ रही, जबकि सब इसमें शामिल नहीं था जो चीज़ें लाए हम। ठीक है, बहाने बहाने से आ रही, अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को अपना दुश्मन जानता है जो ईमान नहीं रखता। अब देखिए इसमें सवाल पैदा होता है ना, लेकिन सब खामोश चुपचाप। तो एक बैठा हुआ कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ये कैसे मुमकिन है कि कोई मोमिन भी हो ईमान भी ना रखता हो। कितना अच्छा सवाल किया कि किताब वो उस हदीस के साथ दर्ज है, किताब में हदीस लिखी हुई साथ में सवाल भी दर्ज है। उसके बाद रसूलुल्लाह का फिर जवाब साथ साथ उसका आ गया कि हाँ ये वो है जो बुराई से नहीं रोकता। आज सारे यही हैं, हम क्या बुराई से रोकेंगे, फसाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, हम डरने लगते हैं, हम डरते हैं। क्या कह दिया इसकी बेटी को कि तुम्हें एडमिशन तो मिल गया, तुम डॉक्टर तो बन गई हो, हॉस्पिटल जा रही हो, बेपर्दा जाती हो बेटा, ये कितना बड़ा नुकसान है तुम्हारा, ये कितनी तनख्वाह मिलती होगी, क्या होता होगा, लेकिन है तो तुम बेपर्दा, कितना नुकसान होता तुम्हारे पीछे पीछे जो है अज़ाब के फरिश्ते जो कुत्ते जो भौंकते हुए चलते हैं, अज़ाब के फरिश्ते लानत भेजते हुए चलते हैं, हमें पता ही नहीं। अच्छा वो बता रहे तब तो पता हो जाए आपको, छोड़िए कहाँ से कहाँ बात जा रही है। कहा गया था कि बहुत दिनों बाद खुल रही क्लास, तो ज़रा सा जामे में रहिएगा फ्रेम के अंदर, तो ये का फ्रेम में नहीं रह पा रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, 6-7 महीने के बाद खुला है ना, यहाँ तो आदि हैं बोलने के, बताने के, समझाने के आदि हैं। हमारी सब बच्चियाँ जो हैं बार बार जो है, हमने बार बार बताया था, अभी तो उसने कहा जी जी मैं समझ गई क्या कौन सी हदीस से क्या है। तो क्या कहा जा रहा है कि माल मोमिन और काफिर दोनों हासिल करते हैं। इस पर मैंने कहा था क्या सवाल पैदा, माल मोमिन और काफिर दोनों हासिल करते हैं, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता। सुनिए, माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता। कैसे, अब सुनिए कैसे। आप देखिए माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं। ये डॉक्टरी पढ़ेगी, इंजीनियरिंग पढ़ेगी, पीएचडी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जितने हुनर सीखेगा, जितने किस्म के सब किस लिए कर रहा है, ताकि इसको जॉब मिले और पैसे मिले उसको, है ना, यही वजह है ना। ये इल्म हासिल करना, ये आज की दुनियावी इल्म जितने हैं, इसको हासिल करने से क्या होगा, इसे हासिल करने से माल मिलेगा हमें। तो माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं, यानी माल हासिल करने के लिए काफिर और मोमिन दोनों मेहनत करते हैं, दोनों सीखते हैं, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन सीखता। क्यों इल्म मोमिन सीखता? क्योंकि इल्म जो है हर चीज़ का एक रास्ता होता है, और जन्नत का रास्ता इल्म, और तुम जन्नत के लिए पैदा किए हो, जन्नत तुम्हारे लिए पैदा की गई, तो आपको रास्ता पूछना चाहिए कि मौला वो रास्ता है किधर, जिधर से हम जन्नत में जाएंगे। तो कहा वो रास्ता इल्म है, जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। खुदा का शुक्र भेजिएगा घर पर, शुक्राने की नमाज़ पढ़िएगा कि हम आए हैं इल्म हासिल करने के लिए। हम सख्त तरीके से भी बताएंगे और अच्छाई से भी बताएंगे, मोहब्बत से भी बताएंगे, टॉन्ट भी करेंगे, सब काम करेंगे ताकि आपके अंदर एक जज्बा कैफियत पैदा हो कि आप इल्म हासिल करें। हमारे यहाँ इल्म हासिल करने का बिल्कुल भी रवाज नहीं, ख़ासतौर से दीनी उलूम हासिल करने का। अगर कोई दीनी उलूम हासिल करता कोई बच्चे बच्चे तो मैं देखता हूँ कि किसी महफिल में, किसी जगह मजलिस या मिलाद में कोई जमा होते तो उस बच्ची से ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल वो बूढ़ा आदमी पूछ रहा होता है कि जिसका आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ये दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। दुनियावी इल्म का इतना गुरूर होता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और हमें पता, ताकि वो डिप्रेस हो, अपने आप को कमतर समझे, उसको डीमोरलाइज किया जाता। तो ये आपको पहले से बता रहे थे कि आप उनकी मानने वालियाँ हैं कि जिन पर फूल आने थे मगर पत्थर आए, जिसमें मौला बशीरुल गुशा कहते हैं कि अल्लाह के सुनिए, अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। तो ये अल्लाह के लिए जलील हो रही थी, इनको रुसवा किया जा रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, ये सब्र का दामन नहीं छूट रहा था। जब दरबार में कहा गया कि देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया, क्या कुछ भी नहीं किया, खैर के अलावा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। अल्लाह को बस, सारे भाई भतीजे भांजे बेटे औलाद सब करबला के मैदान में शहीद हो गए, वहाँ दरबार में जालिम के दरबार में खड़ी होकर कह रही हज़रत ज़ैनब कि हमने तो खैर के अलावा कुछ देखा ही नहीं। क्या कहना, क्या बुलंदी थी इन लोगों की। फातिमा की बेटियाँ थी, शेर खुदा के औलाद, हमने तो खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। अल्लाह होगा, अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाना कहीं बेहतर। तो ज़रा भी वो मत करना अगर कोई किसी किस्म की उल्टी सीधी बात करे हसद और जलन में, क्योंकि उसको तो इल्म हासिल नहीं हो रहा ये वाला, तो वो हसद करेगा। ओहो इनको देखो, वो बड़ा पर्दा करती हैं, ऐसे ऐसी कुटनी होती हैं ये लड़कियाँ। मालूम होता है कि जितनी बेपर्दा औरतें हैं सब बिल्कुल दूध की धुली हुई हैं, बहुत मासूम है सारी की सारी। इनसे कोई भूले से भी गलती सरदर्द हो जाती तो फौरन उसको पकड़ा जाता, लेकिन जितनी अच्छाई कर रही थी उसमें उसकी हौसला अफजाई नहीं होती। ये सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बेटा आपने एडमिशन ले लिया, अल्लाह की तौफीकात में इजाफा कर, नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं। हाँ वहाँ एडमिशन है CBM में मिल गया तो फिर क्या पूछना। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बच्ची, यहाँ एडमिशन हो गया कुछ नहीं। ये ज़माने का हम बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं कि हम सब एक एक चीज़ देखते तो हम दिल बहुत शदीद जलता है मेरा दिल। तो क्या करें, 6 महीने से भरा हुआ तो आप क्या करें, कहीं नहीं उड़ेल दो सारा। इसलिए हाँ पहले आपसे मुलाकात हुई तो आप ही बुढ़े लिया अपने। तो माल काफिर और मोमिन दोनों जमा करता, अगर इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता। अल्लाह अकबर, वो ये फजीलत है आपकी, इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता। क्यों, ये हर चीज़ का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। जन्नत का रास्ता इल्म है, आप जन्नत के लिए पैदा की गई तो आपको रास्ता बताया जाएगा। तो रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि इल्म है जन्नत का रास्ता। कैसा कैसा रास्ता है जी, कोई हद और इंतहा नहीं। इसीलिए मौला मशहूर हुसैन हज़रत अली इस्लाम इशारत फरमाते हैं, बहुत अच्छा कौल है, बहुत अच्छा कौल है, हमने भी बहुत कम बताया है, अब मैं इसको बार बार रिपीट करूँगा इस साल। अच्छा कौल, बहुत अच्छा, ये वही वाला कौल है जो पहले हमने आपको सुनाया था, उसको दूसरी तरह से बदल के। वो तो एक चीज़ को बदल के कई अंदाज में एक ही चीज़ पेश कर सकते हैं, जैसे इल्म का पूछा तो सबका अलग अलग जवाब दे दिया। तो फरमाते अमल के कबूल होने को, अमल के कबूल होने को खुद अमल से ज़्यादा अहमियत दो। क्या समझे, अमल के कबूल होने को खुद अमल से ज़्यादा अहमियत दो। वो कबूल ही नहीं हो रहा, तुम कितना भी अमल करती रहो, कोल्हू के बैल की तरह एक जगह घूमती रहोगे। बगैर इल्म के जो अमल करने वाला कोल्हू के बैल के मानिंद है। एक ही जगह चक्कर लगा रहा। बगैर इल्म जुहद की इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना है और कुछ भी नहीं। आप देखिए पूरे रमज़ान में जिस्म थकाया जाता है, कितना थकाया जाता है। पूछने रसूलल्लाह से पूछने बाद भी बताऊँगा इसको, कई बार बताऊँगा, पहली बार ये नहीं जो कहने जा रहा हूँ। रसूलल्लाह से पूछे, अल्लाह रसूल हज़रत अली पूछे, अल्लाह रसूल माह सयाम में सबसे बेहतर काम कौन सा है? तो आपने कहा गुनाहों से बचना। कौन सा काम सबसे बेहतर है? वो तो बचा जाता है, बताइए ज़रा। नहीं बताया जाता, कोई भी नहीं बचता। अपने पराए देने बाएँ कोई भी नहीं बचता। सब वो मैं आठ दिन रमज़ान जो हो रहा होता ना, उससे रमज़ान में तो खाने पीने की फिक्र में रहती है, या कपड़ा की फिक्र में रहती, या अभी सोने निढाल हो रहे हैं अब, और ये है वो है दूसरे पर अफ्तारी में जाना। अच्छा जनाब, कितनी बातें बताइए आपको, कहाँ कहाँ से बातें बताइए। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कैसे कैसे लोग थे, आया आके कहने लगा, ए अल्लाह रसूल मैं बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। एक मिनट में कैसे आपको बड़ा आलिम बना दिया? ए अल्लाह रसूल मैं बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपने फरमाया अल्लाह से डरो। वाही जवाब है अल्लाह से डरो। कितनी ऐसी चीज़ें जिसका सिर्फ एक जवाब देते थे वो पूरी तफसील हो जाती, अल्लाह से डरो। अब दूसरी जगह पे और जगह पे एक जगह पे कौन है, एक अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तुम्हें इल्म अता करे। सूरह बकर में अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तुम्हें इल्म अता करे। जब डरता आदमी तो इल्म अता होता है। जब नए नए सारे लोग जो कैदी बना के लाए जाते थे मुसलमान होते थे तो अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठते थे और बाद अपने पुराने साहबियों से कहते थे एक एक आदमी को लेके जाओ इसको कुरान पढ़ाओ। तो लोग जाते थे कुरान पढ़ाते थे, एक साहबी को भी दिया एक आदमी को जो इनको ले जाओ जाके कुरान पढ़ो। तो फिर कुरान पढ़ने लगे, सूरह ज़लज़लात को पढ़ाने लगा, छोटा सूरह पीछे से पढ़ाया जाता ना। जब ज़मीन बड़ों जोरों के साथ दलदले में आ जाएगी, ज़मीन अपने अंदर के बोझ में माँ दनिया मुर्दे वगैरह निकाल डालेगी, एक इंसान कहे कि उसको क्या हो गया, उसको अपने तमाम हालात बयान करे, क्योंकि जिसने ज़रा बराबर नेकी की वो भी देख लेगा, जिसने ज़रा बराबर बदी की वो भी देख लेगा। जब बात यहाँ तक पहुँची तो वो जो बद्दू था जो आया था वो उसने गर्दन झुकाई, सुनता रहा, कहा कि क्या ये कुरान में लिखा हुआ तो जो पढ़ाने के लिए गए था? उनका हाँ। क्या ये अल्लाह ताला ने कहा? उसने कहा हाँ। पर गर्दन झुका सुनता रहा, फिर उठा कहा बस काफ़ी है हमारे लिए, उठ के चला गया। सुनिएगा दर्द गौर से, सुनिएगा गौर से, सुनिएगा जो अभी सुनाया है ना कि अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें इल्म फराम करे, चला गया। ये आदमी आया अल्लाह के रसूल के पास शिकायत करने के, ए अल्लाह के रसूल उसने तो एक पूरी सूरह सुनी थी, जब यहाँ तक पहुँचा तो चुपचाप रहा और चला गया। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? कहा वो फकीह हो गया है, डर गया ना कि मेरा एक एक लम्हा मेरा नोट किया जाएगा। कहाँ आप डरती हैं? क्या आप समझती कि अल्लाह है देख रहा मुझे, हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह देख रहा, खाली देख नहीं रहा हमारे सीने का भी हाल देख रहा कि आप जो सब पर निगाहें डाल रहे हैं कैसी डाल रहे हैं आप, उस्तादाना निगाह डाल रहे हैं कैसी वाली निगाह डाल रहे, सब दिल का हाल जानता हो, जो कुछ कर चुके वो भी जानता, जो करने वाले वो भी जानता, वो आला अल्लाह है हमारा। तो इसलिए कहा था कि मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, क्या करूँगा? अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। आपके लिए भी यही है, सबसे पहले इब्तदान मैंने यही लिखा था कि आपको ये बताएंगे, लेकिन इधर उधर आते गए तो इधर से उधर, उधर से उधर हो गया, जो तरतीब लिखी थी वो तरतीब से नहीं आया आपके पास। लेकिन बताना पहले यही था कि देखिए आप यहाँ आई हैं तो आपको क्या करना है कि इल्म हासिल करना, उसी वक्त इल्म हासिल करेगा जब आप अपने पिछले गुनाहों को छोड़िएगा, तौबा कीजिएगा, तो वरना फ़ायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आना जाना होगा और थोड़ी सी तफरी हो जाएगी, एक नया माहौल मिल जाएगा, तफरी हो जाएगी, दिल भर जाएगा। कभी कहा जाएगा ये आपका इम्तिहान लिया जा रहा, तो पता चला 40 लड़कियों में से 15 लड़कियाँ रहेंगी, भाग जाएंगे क्योंकि दिल लगा के तो पढ़ नहीं रही थी, दिल लग नहीं रहा था। ये वो वाली इल्म था कि जिसमें दिल नहीं लग रहा, ये छोटा इल्म नहीं होता, ये बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है, ये बहुत बड़ा इल्म है। आई समझ में? तो क्या हो गया, क्या फरमा इल्म का बुलंद तरीन मकसद जो होता है वो खौफ खुदा होता है, उसने खौफ खुदा हासिल किया कि अच्छा राई दाने को नहीं वो भी देखे, और बदी जो हम करेंगे वो भी देख लिया जाए कि हाँ, किंतु फिर बस हो गया। यानी इसका मतलब ये कि उसने समझ लिया कि एक एक पर अल्लाह ताला हमारा देख रहा है, बस ये उसने अपने दिल में बिठा लिया। तब रसूलल्लाह का वो फ़कीह हो गया। जो फ़कीह होते हैं वो यही कहते हैं, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक चलना फिरना, उठना बैठना, देखना, हाथ का हिलाना, सब वो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि सब अल्लाह देख रहा है। और जो जो ये सब समझता है कि अल्लाह उसे नहीं देख रहा है, वो काफिर है, चटे इमाम कह रहे हैं। जो ये समझता है कि अल्लाह उसे नहीं देख रहा है तो वो काफिर है, और जो ये समझता है कि अल्लाह उसे देख रहा है इसके बावजूद वो कोई गुनाह कर रहा, तो देखने वालों में नाउज बिल्ला सबसे हकीर अल्लाह को जाना। समझिए क्या कहा, देखने वालों में सबसे हकीर अल्लाह को जाना, क्योंकि बच्चे को निकाल देते हैं, ये तू चला जा मैं चला जा, इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे मतलब के लोग रह जाएँ तब कोई काम करे या ना करे। तो देखने वालों में सबसे हकीर किस को जाना, कहे अल्लाह को जाना। तभी तो आप ये बुराई कर रही, तभी तो कह रही सुन रही, गीबत चुगली, गीबत चुगली, डूब गया पूरा माशरा, झूठ, गीबत चुगली, हसद, पूरा माशरा डूबा हुआ। हम मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, इसी तरह ख़त्म ही नहीं होती चीज़, नहीं जाती ऊपर, बुलंद नहीं होती। किताबें उठाइए, उठा के देखिए, पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें जब माने हैं, माने क्या, नमाज में माने, नमाज को रोकती आप लाख की कहा कीजिए कि हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम जो चार दिन से जो है वो पढ़ रहे हैं, ज़ारत अशूर पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही नहीं हो रहा, चार दिन के पढ़ने के बाद काम लेगा। बहुत सारी आवाज़ ऐसी जो अल्लाह ताला को पसंद, आप इल्म हासिल करें तो पता चले, हम बस हमने दुआ कर ली ख़त्म, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, देगा उसकी मर्ज़ी, नहीं देगा उसकी मर्ज़ी, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, हुक्म ना दो। एक साहब, एक आरिफ किसी से कहने लगे, तुम जो दुआ मांग रहे हो तुम्हें बारिश बरसने की उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि पत्थर गिरेंगे, ये दुआ शर्त के साथ नहीं मांगी जाती, अपने रब से दुआ मांग रहे हैं तो हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनसे दुआ मांगे, जो दे देगा सुभान अल्लाह, नहीं देगा तो भी सुभान अल्लाह, तो फिर क्यों सुभान अल्लाह, कि फिर सुभान अल्लाह इसलिए कि अबू ज़र गफारी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हो भाई है? अच्छा अच्छा हो रही है, ताजुब है, इतनी तेज तेज में भी हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा बहरा क्या कह रहे थे बताए, उनको बारिश की उम्मीद है, हमें समझ पत्थर गिरेगा। तो अबू ज़र गफ़ारी की वसीयत के अंदर एक जगह पे एक शख्स जब जन्नत पे जाएगा तो उसके बाद अपनी नियामत देखने के बाद ऐसे करके देखेगा, परवरदिगार तो हमारे साथ बंदा था, ऊपर देखेगा तो हमारे इसका मुकाम इतना बुलंद कैसे है, कहेंगे तुमसे ज़्यादा दुआएं किया करता था, यहाँ तो दुआ उतनी ही की जाती है जितने के मसला हल हो जाए, हो गया मिल गया मिल गया ख़त्म, दुआ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दुआ खुद एक नामत है। मस्जिद के अंदर बैठे दो आदमी से नमाज पढ़ने के लिए आए, छठे इमाम भी वहीं बैठे हुए थे, एक शख्स आया, अब ये इतनी चीज़ लेके सब रखती हुई अपने दिल से कहाँ जा रहे हैं हम, चलिए अब देख के सुनाएंगे आपको, नोट कर लेते हैं, चीज़ तो याद रहती है, नोट कर लेते हैं कि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो बहरहाल दुआ पे आ गए थे, तो दुआ कर रहे थे तो छठे माँ बैठे हुए थे, तो एक शख्स दुआ कर रहा था, दुआ करके नमाज़ पढ़ा था, नमाज के बाद फिर नमाजें पढ़ने लगा, दूसरा शख्स नमाज़ पढ़ने लगा था, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दुआ करने लगा। तो उस बंदे ने पूछा कि मौला इन दोनों में से कौन बेहतर, कहें दोनों बेहतर हैं, कहने ज़्यादा बेहतर कौन है, कहें जो दुआ कर रहा, छोड़िए मत, लगी रहिए, 20-20 साल हो जाती है, बहुत सारी दुआएं ऐसी जो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, हम कुछ नहीं देखते कि नतीजा क्या है। अगर हमारा काम तो जिस तरह नमाज पढ़ रहे हैं उसी तरह दुआ भी पढ़ रहे, नतीजा नहीं देखना, नतीजा अल्लाह के हाथ में, मर्जी आएगा देगा नतीजा। कभी कभी तो ऐसे भी नतीजा दे जाता हमें पता भी नहीं चलता कि ये उसके वजह से मिला हमें, कि उसकी वजह से मिला, कि जो दुआ कर रहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि रूए ज़मीन पे अल्लाह ताला को दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं, रूए ज़मीन पे अल्लाह ताला, क्योंकि डायरेक्ट हम मुखातिब हैं ना परवरदिगार से, डायरेक्ट हैं। दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं, कोई चीज़ पसंद नहीं दुआ से ज़्यादा। सहीफ़े कामला पूरी भरी पड़ी हुई, कितने गज़ब की किताब है सहीफ़े कामला, छोड़ दिया उसको, पूछा जाए कि कितने लोग पढ़ते हैं तो कुछ जवाब नहीं देगा, तीन हाथ ऊपर उठेंगे बस, कौन सी दुआ पढ़ती है सही पैगामले से, नहीं कोई दुआ नहीं। बल्कि बहुत सारी दुआएं इसमें ऐसी है कि जिसमें नीचे मुफ्ती जाफर साहब ने नोट भी लिखा कि रसूलुल्लाह के एक कौल है कि वो फरमाते हैं कि मुझको दुआए आफियत से ज़्यादा तो कोई दुआ पसंद नहीं है। भाई क्यों नहीं, इसलिए कि आप आफियत से होंगी तभी तो यहाँ आती रहिएगा, तभी तो इल्म हासिल करते रहिएगा, तभी तो आप कोई दुनिया आखरत का कोई काम कीजिएगा। जब आफियत नहीं होगी तो उसी में घिरी रहिएगा, अस्पताल में जा रही, कोर्ट में जा रही, इधर जा रही उधर जा रही, इधर लड़ाई उनकी झगड़ा ये हो रही, इसमें गिरफ्तार है तो दिल नहीं लग रहा है इसमें। आफियत की पढ़िएगा तो आपका दिल लगेगा, ऐसी सारी मुश्किलात ऐसे पानी हो जाएंगी, दिल लगेगा। तो दुआए आफियत मतलब एक ऐसी बात कही हमने। वैसे तो बहुत सारी दुआ, औलाद के हक की दुआ, वालदैन के हक की दुआ, मुसीबत से बचने की दुआ है, बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारी दुआएँ पढ़ती। जब आप पढ़ना शुरू की तो निशान लगाती जाए, ये वाली दुआ पढ़ेंगे, कभी ये वाली पढ़ेंगे, कभी ये वाली, कभी ये वाली, अपने मतलब से मिजाज के मुताबिक आती है, यही पढ़िए दुआ आफियत, कई सबसे ज़्यादा पसंद है। और पूरा मिजान हिकमत में हदीसों के बाब है मुख्तलिफ चीज़ें, हसद का बाब है, ये सदक़े का बाब है, ये शादी का बाब है, रिश्तेदारों से मिलने का बाब, इसी तरह से एक बाब उसमें उसका भी है आफियत, आफियत का बाब, तो उसमें भी यही कि आफियत बहुत ज़्यादा पसंद है, कि आफियत होगी तो सारा काम साथ खैरियत होता रहेगा। सुबह की नमाज के बाद पहली ही दुआ कोई ना कोई छोटी सी निकाल लीजिए कि आफियत की मांगिए, कि दिन भर आफियत से कट जाए। बहरा जो कुछ लेके आए थे कुछ भी नहीं पड़े। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि मुकम्मल खुशनसीबी ये है। अब जब कह जी रसूल खुदा, अब जब ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, तो होगी या नहीं होगी? हमें तो यकीन है कि जो वो कह रहे हैं वो होगी। उन लोगों की तरह तो नहीं कि चांद देख लिया दो टुकड़े हो गए फिर भी करी वाह नौजुल्ला, अरे रसूल्ला का जादू, मोहम्मद का जादू आसमान पर भी चलता है, कभी तो डंडा चलेगा ऊपर जब जाओगे तो जादू चल रहा है ना, उसके बाद वो चलेगा, वो कह रहे आसमान भी चलता, सब जगह चलता है, बात बता रहे थे। इसी तरह बात बता रहे फ़ौर ये खुशनसीबी कह रहे थे, है खुशनसीबी क्या कि इंसान पूरी उम्र इतात इलाही में गुजारे, पूरी उम्र इतात इलाही में गुजारे, ये मुकम्मल खुशनसीबी है। पूरा इल्म इतात इलाही में गुजारे, तो पूरा पूरी ज़िंदगी इताते इलाही में गुजारेगा तो कैसे गुजारेगा, जब उसके बाद इल्म होगा तभी तो गुजारेगा, वरना थक जाएगा एक ही चीज़ को रटते रटते रटते। इल्म होगा तो उसे मालूम होगा इधर आए उधर गए, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो करते करते उसको लज्जत आएगी, मज़ा आएगा उसको। पूरी ज़िंदगी इताते इलाही में गुजर जाएगा, बुढ़ापा कैसे गुजारे तो जवानी कैसे गुजारे तो लड़कपन कैसे गुजारे तो शादी की बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारे, किस चीज़ के बारे में पता है, किसी चीज़ के बारे में सब कुछ, शादियाँ की शादियों के फिक्र हैं, सब बच्चों की शादियाँ हो जाए अल्लाह करे, खड़ा करके पूछ लिया जाए बताओ कुछ शादी के बारे में, कपड़ा जेवर कपड़ा कपड़ा कपड़ा, एक कब्र खोदी जाएगी उसमें मुर्दा दफड़ा, दूसरी कब्र तीन चार कब्र और उसमें क्या कर कपड़ा होगा, इसराफ है सब कुछ नहीं होगा उनका। जाओ रसूल खुदा से पूछ के आओ, यहूदी क्या शादी थी उसने कहा आप हमारे यहाँ शिरकत कीजिए करने, ताकि रसूल खुदा से पूछ के आओ। रसूल खुदा से पूछने के लिए वो लोग गए, पूछ के पूछा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, पूछ के बीवी सईदा के पास आए कि हमने मौला अली से और रसूल खुदा दोनों से पूछ लिया, उन्होंने इजाज़त दे दी। आपने भी कहा कि अच्छा, फिर फौरन वजू किया, दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फटे पुराने कपड़े जो थे उसी को पहन के सवारी सवार हो गए डोली में, जितने सीवन पेवन सब हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे, थे तो सारे फटे पुराने, ये कहाँ से आ गए? जिधर से आपकी सवारी गुजरती थी उधर खुशबू की लिपटें निकल रही थी, ये कहाँ से आ गया? यहाँ तक कि वो सवारी यहूदी के दरवाजे पहुँची, उनकी औरतें अपने ख्याल में, अब आगे वहीं पे जो बता रहे, अपने ख्याल में बड़ा जर्क बर्क लिबास पहन के आई थी, लेकिन जब जन्नती लिबास देखा तो हैरान रह गई। उसमें में वही है कि फिर दुल्हन जो है बेहोश हो गई, मर गई, आपने वजू किया, फिर दौर का तमाश पड़ी, दुआ की, वो जिंदा हो गई, 70,000 यहूदी ईमान लेके आए, बहरह जिंदा हो गई, नहीं जिंदा हो गई, सब अपनी जगह पे जिंदा हो गई। तो हम आए तो प्यास तो ये है कि हम जब कोई दुआ करते हैं कि लड़की की शादी हो जाए, क्या तुम्हें कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, कोई और कोई तरबियत कर, कुछ नहीं तरबियत इनके पास, कोई तरबियत नाम की कोई चीज़, कोई किताब पढ़ी कर नहीं, कोई घर ऐसा नहीं कि जिस घर में बच्चे ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर शादीशुदा बच्चियाँ ना हो या शादी होने वाली बच्चियाँ ना हो, सब घर मौजूद, लेकिन किसी घर ना आपको ख़ानदान की अखलाक की कोई किताब मिलेगी, ना बच्चों की तरबियत की कोई किताब मिलेगी, किसी की कोई किताब नहीं, क्या किसी को ज़रूरत नहीं? तो ये मोहम्मद आले मोहम्मद ये ढेर क्यों लगाया हुआ इन सब चीज़ों का? अगर आपसे सवाल पूछे तो क्यों ढेर लगाया हुआ, ये क्यों क्यों उन्होंने लिखा है? बच्चों की तरबियत की किताब ही बिल्कुल अलग है, क्या क्या तरबियत किताब है देखें, किसी को कुछ पता ही नहीं, बस ये दुआ हो रही है, अल्लाह लड़का, या अल्लाह लड़का, या अल्लाह लड़का, लड़का लड़का, या अल्लाह लड़का। उसको छोड़ के भाग रहा होता तब क्या होता? लड़का, तब भी लड़का होता। जादू करके इसको बस जादू पर दिया है, उसको लेके चली गई, पागल हो गया बिल्कुल, बीवी के पीछे दीवाना हो रहा है, फिर बीवी पीछे दीवाना हो रहा है। सब इल्म की कमी से सारा मसला इल्म की कमी है पूरे माशरे के अंदर, सारा मसला इल्म, हर शोबे के बारे में इल्म हासिल कीजिए, नियत कर लीजिए कि मैं हर शोबे के बारे में इल्म हासिल करूँगी ताकि पूरी ज़िंदगी इताअत इलाही में गुजरे, जो रसूलुल्लाह ने कहा, जो हदीस सुनाई अभी आपको। और इतनी अहम तरीन चीज़ें, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि अब एक हदीस आपको सुना रहे, कितना बड़ा काम है। हज़रत मूसा से परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा, खैर की तालीम हासिल करो, फिर लोगों को उसकी तालीम दो। हज़रत मूसा, खैर की तालीम हासिल करो, फिर लोगों को उसकी तालीम दो, होगा क्या? सुनिए अब क्या होगा। खैर की तालीम हासिल करो, फिर लोगों को उसकी तालीम दो, ये आपके लिए भी है, खैर की, यहाँ खैर की तालीम मिलेगी, एक से एक उलमा आएंगे, बड़े बड़े आलिम आएंगे, सब आएंगे पढ़ाए, हम तो आपको ऐसे ही आ गए यो करने के लिए, असल में बाद में उलमा आएंगे, उलमा सब बाद में आएंगे, तो घबराइएगा मत आप मुझे देख के। तो खैर की तालीम हासिल करो, फिर लोगों को तालीम दो, क्योंकि मैं भलाई की तालीम देने वालों और तालीम हासिल करने वालों को दोनों की खबरों को नूर से इस कदर मुनव्वर कर दूँगा कि वहाँ उन्हें वहशत नहीं होगी। कोई खबर ऐसी मिलेगी आपको जो मुनव्वर कर दिया बल्ब लगा के 1000 वाट का? वो अल्लाह ताला मुनव्वर कर रहा। खैर की तालीम हासिल करो, फिर लोगों को उसकी तालीम दो, क्योंकि मैं खैर की तालीम हासिल करने वालों को और तालीम करने वालों को तालीम दें, दोनों की खबरों को इस कदर मुनव्वर कर दूंगा उनको वहाँ वहशत नहीं होगी। एक इंसान के लिए सबसे खौफनाक जो वक्त आता किसी भी इंसान के लिए, तो वो क्या होता? वो होती कब्र। लेकिन मोमिन के लिए अगर होती ही नहीं, मोमिन के लिए नहीं होती, उसे जब दिखाया अनवार दिखाए जाते हैं मोहम्मद आ रहे, मोहम्मद का कहा जाता है कि चलो अब तुमको दिखाया जाता है, उसके बाद उससे कहा जाता है कि चलो तुम चलना चाहते हो साथ में या रुकना चाहते हो, वो सब देख चुका होता, कर नहीं मैं चलूँगा, अब वो रुकना नहीं चाहता। तो हमने कोई चीज़ देखी नहीं क्योंकि हम जाहिल हैं, हमारी निगाह सिर्फ गुनाह की चीज़ों को देख रही होती, टीवी ड्रामा गुनाह ये वो देख रहे, इसलिए हमारी निगाह में वो पावर नहीं रहेगी कि जो इन चीज़ों को दर कर सके, देख सके, तो इसलिए हम देख ही नहीं सकते। ये हम कहेंगे हाँ चलिए, हम चलने को तैयार हैं, हम तो उस चक्कर में लगे, हर वो चीज़ तलाश कर रहे होते हैं जो होती नहीं यहाँ पर, और जो चीज़ होती है मिल जाती है उसको समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं, 4 दिन बाद छूट जाएगी आपसे, 4 दिन बाद छूट जाएगा, हमें तो वो चीज़ चाहिए छूटे ना। क्या आप बता सकती हैं कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है हज़रत आदम से लेके और क़यामत तक जब हमारे इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे, कि सारे लोगों में 124,000 अंबिया आए, मोहम्मद आले मोहम्मद आए, इन लोगों ने सबका क्या काम किया? यही काम किया कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे कि इबादत करो, अल्लाह को एक जानो, उसके ये काम ये करो तो इंशाल्लाह तुम लोग फला पा जाओ, ये करते। लेकिन जो मुसीबतें मोहम्मद आले मोहम्मद उठाई इस राह में इसको फैलाने में, वो तो किसी ने भी नहीं उठाई। जो गोगे पत्थर मारे गए नूह के ऊपर, पत्थर मारे जाते 950 साल तक पत्थर खाते रहे, आरे से चीरा जाता रहा, तेल के कढ़ाव में डाला जाता रहा, सब जुल्म हुआ तमाम अंबियाओं के साथ। लेकिन इतनी जहमत किसी ने भी नहीं उठाई इल्म के फैलाने में, अल्लाह की तरफ बुलाने में, जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने और अल्लाह के रसूल ने उनके औलाद ने की है। ठीक है ना? लेकिन किसके आपके लिए काम के लिए क्या हमें आखिरत मिल जाए? क्यों दुनिया क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए दुनिया, बताते कि क्यों नहीं चाहिए। ये बच्ची चली जाए तो बताते फिर हम। अब बताइए कि बीवी सईदा ने जिस कदर मशक्क़तें की हैं तो उनको दुनिया में कितनी राहत मिलनी चाहिए थी? अल्लाह की राह में जो उन्होंने ज़हमतें उठाई मोहम्मद आले मोहम्मद थे, उस वजह से उनको दुनिया बहुत मिली। और मिली फिरौन को, वो बादशाह बना बैठा हुआ था, शद्दाद को मिली, कारून को मिली। कहता था गौर भी तो करो कारून पे, शद्दाद पे गौर भी तो करो, कुरान तो पढ़ो ज़रा सा। अपने माल और अहबाब के साथ ज़मीन में धंस गया था, वो चाह रहे हो? फिरौन देखो पानी में गर्क हो गया था, आज तक उस पर लानत पड़ी कुरान के, वो चाह रहे थे। इन पे क्या हो रहा? कहीं तकलीफ में थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे, भूखे होती थी, आते थे रसूल्ला पूछते थे कि क्या हाल है बेटी, तो कुछ बताए ठीक है। चक्कर खा के फिर जर्द होगी, चक्कर खा के गिर रहे तीन दिन से, हम लोग फाके से, बच्चे हमारे भूखे, ये हाल था किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए भूखे, सबको खाना तकसीब, अल्लाह के लिए भूखे। मिला क्या दुनिया में? बज़ाहिर तो कुछ नहीं मिला, जो हम आप चाहते हैं वो तो नहीं मिला। फिर क्या मिला? आज तक दुरूद सलाम है। आज तक दुरूद सलाम है, क्या इज्जत है, क्या मर्तबा है, क्या चीज़ पाई गई, क्या उनको मिला है? जन्नत इनकी है, जन्नत इनकी है, इनकी औलाद ही जन्नत है। जन्नत खरीद ली इन लोगों ने अपने अमल से। जिसने दुनिया खरीद ली उसको क्या हुआ? कहीं गर्क हो गया, डूब गया, धस गया ज़मीन में। ये है दुनिया, तो ये वाली दुनिया नहीं चाहिए। दुनिया वो चाहिए जो हमेशा बाकी रहे, हमेशा बाकी। तो पूछा किसी ने कि हज़रत मूसा से, परवरदिगार कहता कि ए मूसा, मैंने राहत को, आराम को, खुशी को, राहत को मैंने जन्नत में छिपा रखा, लोग दुनिया में तलाश कर रहे हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद नहीं तलाश कर रहे थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे थे, सारी सख्तियाँ झेल रहे थे, कुछ मालूम था कि वो राहत तो दुनिया में है ही नहीं, तो हम क्यों तलाश करें? वो कह रहे हैं ना कि हम ए मूसा, हमने राहत को जन्नत में छिपा रखा, लोग दुनिया में तलाश करते। इसी चीज़ को छठे इमाम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, एक जगह पे छठे इमाम फरमाते हैं कि जो चीज़ दुनिया में पैदा ही की नहीं की गई उसे क्यों तलाश करते हो? तो लोगों ने पूछा मौला वो क्या चीज़ दुनिया पैदा नहीं की गई? राहत दुनिया में नहीं पैदा की गई, है ही नहीं। इसी दुनिया गुजारे के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये मुकम्मल चीज़ नहीं है। ये दुनिया गुजारे के लिए, यहाँ पैदा ही नहीं हुई राहत। राहत से मिलती जुलती चीज़ें जिससे दुनिया में गुजारा हो। कहाँ राहत आपको मिलती? जब कोई खुशी मिलती है तो उसके पीछे एक छोटा सा गम लगा रहता है, या बड़ा या छोटा गम लगा होता कि नहीं लगा होता? फिर शुभा लगा होता, खौफ लगा होता, डाकू का खौफ, चोर का खौफ, दुश्मनों का खौफ, रिश्तेदारों का खौफ, छिपाओ बनाओ, तो हर वक्त किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है। तो कहाँ मुकम्मल राहत ये है कि मुकम्मल राहत हो, कोई खौफ ना हो, वो है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब आगे यूँ बढ़ते हैं कि आपको बताते हैं हम कि रसूलुल्लाह के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, सारे लोग असाब बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जब क़यामत बरपा होगी तो लोग खौफजदा होंगे, खौफ दहशत होगी, हसरत होगी, नदामत होगी, दहशत होगी, खौफ होगी, हसरत होगी, नदामत होगी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे सबसे ज़्यादा बताएं, आपको एक बात बताएं, याद रखिए, गिरह मात लीजिएगा, माद नाम की किताब, माद, माद माने कयामत, मुहसिन क़रैज़ी की किताब है माद कयामत, उसमें 6-7 चीज़ें लिखी हुई कि जब कयामत बरपा होगी तो लोग सबसे ज़्यादा हसरत किस बात पर करेंगे। बल्कि यहाँ तक है कि बात चीज़ों में कि लोग अपने हाथ काटेंगे, ना से कि काश मैंने ये काम कर लिया होता, क्योंकि उनको वक्त तो गुजर गया, अब तो वक्त पलट के आने वाला ही नहीं, उन्हें काम करने का मौका मिले। तो सबसे ज़्यादा हसरत किस चीज़ को होगी कि इल्म हासिल करने का मौका था और इल्म हासिल नहीं किया, वो क़यामत के दिन सख्त अफसोस करेगा, गज़ब का अफसोस होगा क़यामत के दिन, कि छोटा मोटा अफसोस नहीं होगा। ठीक है, हसरत कर, तो इसी तरह रसूलुल्लाह बता रहे हैं जब क़यामत बरपा होगी तो क्या होगा, लोग हसरत करेंगे, निदामत करेंगे, अफसोस करेंगे। यहाँ तक के अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबे हुए होंगे। सुन लीजिए, शेख सदूक की किताब जामुल अखबार में ये दर्ज है, जी शेख सदूक की किताब जामुल अखबार में ये दर्ज है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कान की लौ तक अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे, तो आप सोचेंगे नहीं पसीना तो इधर उधर बह जाएगा, नहीं, अल्लाह की कुदरत है, कहाँ से बहेगा, नहीं बह सकता, जो चाहेगा वही होगा। तो हसरत नदामत होगी, खौफ होगा, हसरत होगी, नदामत होगी, बहशत होगी, तो क़यामत के अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबा हुआ होगा। तो जो साहबी वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इससे बचने की क्या सबील है। सुभान अल्लाह, देखिए फिर वही सवाल आ गया, पूछा कि यह सब तो होगा लेकिन इससे बचा कैसे जाए, क़यामत तो आनी है हर शख्स के ऊपर, जो दुनिया में आया उसको क़यामत ज़रूर देखनी है, मौत देखनी, क़यामत देखनी, खबर देखनी, जब हमें ये सब चीज़ देखनी है तो अकल का तकाजा ये है कि हम इसके लिए तैयारी करें, बचें इसमें से, तकाजा अकल है कि हम जिंदा हुए तो मरेंगे ज़रूर भाई, मरेंगे तो हम, ए अल्लाह मैं तुझसे मौत के बाद राहत का सवाल करता हूँ, बाद मौत के बख्शिश का, हिसाब के बाद माफ़ी का, ये तकीबात है नमाज में, ये दर्द है दुआ, तो मैं इसको 3 दफ़ा पढ़ता हूँ, उसके बाद 7 दफ़ा पढ़ता हूँ, या बारी हो या बारी हो या बारी हो या बारी हो, तो कबर हसरात अज़र और कबर वगैरह के उससे महफूज रहेगा, पढ़ता ज़रूर, जब भी कभी डर लगने लगता है यार मौत आने वाली है क्या कहीं, ए अल्लाह मुझसे मौत के बाद राहत सवाल आएगी तो ज़रूर, तो हर वक्त सवाल करो कि अल्लाह मैं तुम मौत के बाद राहत सवाल करो, बाद मौत के बख्शिश का, हिसाब का, माफ़ी का, और क्या होगा, और क्या सोचोगे, डर हाय वाह वाह वहला बचा रहे, इसको होना नहीं होना तो यही कि डरता। तो जो ये लोग कहते हैं अल्लाह के उससे बचने की क्या सबील है, तो हमें बचने की हर चीज़ की सबील देखना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि खबर में क्या क्या चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी, क्या क्या चीज़ नुकसान पहुँचाएगी, तो हमें उन जो नुकसान पहुँचाएगा उससे डरें, क्योंकि सब तो हमें उसमें फेंक के चले जाएँगे, रहना तो हमें है ना अकेले, तो हमें कोई साथी भी ले जाना चाहिए, कौन साथ में जाएगा, कोई जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, तो उससे बचने क्या सबील, तो आपने फरमाया कि उलमा के सामने बैठो, जानू तय करो, यानी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, उलमा के सामने बैठो, जानू तय करो, इल्म हासिल करो, इतनी बड़ी चीज़ से बचिएगा क़यामत, जब इल्म हासिल कीजिएगा तो हर चीज़ से बचिएगा। मौला मुश्किल घुसा के एक कौल ने देखी, कुछ भी कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो क्या थी आपको बताइए, एक उनका मौला का कौल है, आप फरमाते हैं कि आपसे मंसूब है कि जब मैयत को कब्र में रखा जाएगा तो चारों तरफ से उसको आग घेर लेगी, और बोलिए मौला का कौल सामने लिखा हुआ आपको बता रहे हैं, चारों तरफ से घेर लेगी आग, सदका आएगा एक आग को बुझाएगा, नमाज आएगा दूसरी आग को बुझाएगा, इसी तरह तीसरी आग को बुझाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि आग को बुझाए चौथी आग को भी बुझा दिया जाएगा, फिर वो कहेगा उसका इल्म उससे कहेगा, इल्म कहेगा, क्या कहेगा उससे, मुतमईन रहो, मैयत से कहे मुतमईन रहो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर मैं इन सारी आग को पाता सबको बुझा देता। ये कौन है? इल्म आपका। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है? ये साथ हैं, अब्बा अम्मा सब चले गए, भाई रिश्तेदार बेटा सब चला गया, ये साथ है। अभी पहले भी सुना चुके कि इल्म कफन में साथ साथ जाता है, माल यही रह जाता है, वही सुनाया था, वही है अभी, कि इल्म जाता है साथ साथ और माल यही रह जाता है। तो इसलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, सब चीज़ों को छोड़ के इसी के पीछे लगे हुए कि इल्म हासिल कर, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। माशरे का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उस तरफ चले जाते हैं। ये वाला प्रेशर नहीं कि अरे किसी बच्चे को देखा, ये कितने साल का, 8 साल का, किस क्लास में पढ़ रहा, नहीं अभी तो पढ़ता नहीं, सब लोग ताज्जुब देखे, ये पढ़ता ही नहीं अभी तक, लेकिन ये वाला कोई ताज्जुब नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ता, इसका ताज्जुब नहीं होगा। तो मौला फरमाते हैं कि तालिब इल्म खुदा का दोस्त है, तालिब इल्म खुदा का दोस्त है, रसूलल्लाह कह रहे हैं, मौला नहीं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ये जो वज़ीर आज़म के साथ साथ हर वक्त रहता है, ये कौन है? कि उनका दोस्त है, वो बड़ी वक़्त पड़ गई तो दोस्त है, यहाँ तालिब इल्म कौन, क्या अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। बस तुम्हारी नज़र में अल्लाह की अहमियत होती तो वो समझती कि क्या मतलब हुआ दोस्त का, अल्लाह का दोस्त। तालिब इल्म कौन है? कि अल्लाह का दोस्त है। जो शख्स इल्म को दोस्त रखेगा जन्नत उस पर वाजिब होगी, जो शख्स इल्म को दोस्त रखेगा जन्नत उस पर वाजिब होगी। जामुल अखबार शेख सूख की किताब है, रसूलल्लाह का कौल है, सुन लीजिए, इल्म को दोस्त रखिए ताकि इल्म हासिल करती रहिए, बराबर जन्नत पर वाजिब होगी, वो सुबह शाम मर्जी इलाही में बसर करेगा और न निकलेगा दुनिया से ता वक्त के न पी ले कौसर का पानी, न निकलेगा दुनिया से ता वक्त के न पी ले कौसर का पानी, जन्नत का फल खाएगा तब जाएगा यहाँ से, जन्नती फल खाएगा तब जाएगा, और हशरातुल अर्ज जो है उसके बदन को न खाएंगे, और जन्नत में वो हजरत खिज्र का रफीक होगा। क्यों? कौन? तालिब इल्म। अल्लाह की दोस्ती से शुरू हुआ और यहाँ पे आगे ख़त्म हुआ। यह है इल्म हासिल करने का फ़ायदा, यह है इल्म हासिल करने का सवाब जो आपको बताया जा रहा। अच्छा जनाब, तरतीब से नहीं सुना थे, अब तरतीब से सुन लीजिए, थोड़ा वक्त रह गया, शायद कोई मज़ेदार चीज़ मिल जाए आपको, समझ में आ जाए। आप लोग कौन है? बेटियाँ जो ज़रा सा बड़ी हो गई, वो कभी बेटियाँ थी, अब माँ हो गई। जो माँ हैं वो कभी माँ थी, अब दादी हो गई। नहीं दादी तो आप लोग माशाल्लाह से अभी नहीं, हो जाइएगा दादी भी। तो आप लोग बेटियाँ, बेटियों के बारे में ये मैं आपको सुना रहा हूँ शौक़ दिलाने के लिए। ये किताब है आईने तरबियत, इब्राहिम मेमिनी की किताब आईने तरबियत। यहाँ भी हमारे यहाँ भी एक तीसरी पतली सी किताब रखी हुई बेटी अल्लाह की रहमत के नाम से, बहुत पतली सी बेटी अल्लाह की रहमत। इसको क्यों हमने इसको चुना आपको सुनाने के लिए? या आप बेटी भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, सब कुछ हैं आप, तो आप सुनिए क्या है। वक़्त देखिए, वक़्त और दूर करने का नुकसान देखिए क्या है। एक सुनाई दे, एक हदीस मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, तो मैं हदीस सुनाऊंगा नहीं अभी, वो मौका नहीं सुनाने का, वरना बहुत लंबी हदीस है वो, बहुत अट्रैक्ट की। तो मैंने एक जगह बैठा हुआ था, एक साहब को सुनाया जो हमसे काफ़ी बड़ी उम्र के थे, अभी वाले नहीं, अभी तो हम ही हज़रत आदम के ज़माने के लग रहे हैं, उस बहुत 20-25 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा जी ये लिखा हुआ और रसूलुल्लाह कि काश हम लोगों को बताया जाता, पूरी ज़िंदगी गुजर गई आज तक नहीं पता चला हमें। अफसोस कर रहे थे कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई हमें पता ही नहीं चला, इतना सवाब है। बहुत सारी चीज़ों का सवाब इतना ही है कि हमें पता नहीं होने की वजह हमें वक़्त नहीं उस चीज़ की कि हमें पता होता। फ़कीर के हाथ में पैसा देकर आइमा तारीन चूमा करते थे, अल्लाह के हाथ में जा रहा चूमते थे, हमें वक़्त है हमारे दिल में। फ़कीर के साथ बैठ के खाना खाते थे, है वक़्त हमारे दिल में। और गरीब रिश्तेदारों को मुंह लगाने को तैयार नहीं होते क्योंकि हम वक़्त नहीं के उसका सवाब नहीं जानते। सवाब पता हो, पता चले कि पैसा कीचड़ में अगर हीरा पड़ा हुआ आपको पता ये है तो हीरे ही हाथ डाल के निकाल लीजिए, कभी नहीं देखे कीचड़ है क्या चीज़। जिस चीज़ के वक़्त आपको पता है उसके लिए मार मिटिएगा उसकी खत, लेकिन जिसकी चीज़ वक़्त नहीं पता वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हम जाहिल हैं हमें पता नहीं इसलिए उसके वक़्त नहीं। इसलिए इल्म हासिल करने को इतना ज़्यादा ज़ोर दिया इस्लाम ने कि तुम उस चीज़ की तरफ कभी नहीं आओगे, क्योंकि दुनिया जो है क्या कहा जाता, मौला मुश्किल कुशा का कौल है। आप फरमाते हैं दुनिया की बहुत हसीन कौल है, मौला की कौल बहुत ही हसीन है, बहुत खूबसूरत है। दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अखलों को बिगाड़ देती है, दुनिया की चमक धमक और हकीकत कमज़ोर अखलों को बिगाड़ देती है। सामने रख ले वरना भूल जाएंगे, बताना भूल जाएंगे। दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अखलों को बिगाड़ देती है, क्या बता रहे थे उसमें आ गई ये बात। हाँ तो बेटी की बात बता रहे थे, क्या वक़्त है, क्या चीज़ है, क्या अहमियत है बेटी की, सुन लीजिए। फरमाते हैं जिसकी किसी के यहाँ बेटी हो और वो उसे खूब अदब और अखलाक सिखाए, वो खूब अदब और अखलाक सिखाए, गोद में लिए बैठी हुई देवरानी की मजम्मत हो रही, गोद में लिए बैठी हुई सास की गीबत की जा रही, फलाने की, ये तरबियत हो रही है। माँ की गोद जो है तरबियत, पहला मदरसा कौन सा है, माँ की गोद। तो माँ की गोद में तो ये वाला हो रहा, किसी को छोड़ा ही नहीं जा रहा, गीबत हो चुगली है सारी बुराई गोद में ले ले, इसी में परवान चढ़ती रहती, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई खड़ी होकर सुनने लगती, अब किसी मजम्मत हो रही, अब किसी की बात की जाए क्यों की जा रही, शादी से कहीं से आ जाए वापस और देखिए कितने लोगों की शिकवा होता, उसने ये पहना हुआ था उससे ऐसे मिली वैसे नहीं मिली, मजलिस से आने के बाद भी शिकायतें हो रही होती कि उसने ये किया, उसने उसको पढ़ने दिया नहीं, वो तो खफा होकर चले गए कि उनको उन्होंने जो है बस या पढ़ने के लिए हर साल तो वही आती। या अल्लाह ये किस लिए मजलिसें हो रही, ये मजलिसें क्यों हो रही हैं, ये शादी हो रही शुक्राना अदा करो कि हो रही, कहाँ इस ज़माने में लोगों की शादियाँ हो, रिश्ते मिलते नहीं मिल जाते तो ये सब हो रहा, कोई कहने वाला नहीं। बोलो कहो सीखो, लेकिन ऐसा ना बोलो कि लोगों को बुरा लगे, दो दिन बाद इस माँ गई बदतमीजी करे, तमीज़ नहीं, तहजीब तमीज़ के साथ होना चाहिए। ऐसा बोलो कि तहजीब तमीज़ हो पता चले, क्योंकि अखलाक सबसे बुलंद तरीन चीज़ है, हुस्न अखलाक जो है सब बताएंगे सब पढ़ाएंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी इसको निकाले अभी उसको बताते अभी और क्या, उसके यहाँ खूब अदब खुद अखलाक सिखाए, उसे तालीम देने की कोशिश करें, तालीम देने की कोशिश करें, जैसे पता नहीं आप खुद आई हैं तालीम हासिल करने के लिए या वालदैन ने भेजा या किसने भेजा, कोशिश कर रही है तालीम हासिल, पहला दिन है आपका, अल्लाह ताला परवरदिगार ये पहला दिन आपके लिए बहुत मुबारक होंगे, आप आती रहिए, आप आती रहिए, कोई आपसे नहीं कहेगा आप आइए ना आइए, हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आप भी जैसे हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं, बाकी सब उलमा आएंगे वो अपना पढ़ा हुआ भी चले, हम आप जैसे हैं इसलिए आप जैसी बातें कर रहे हैं। ताली कोशिश करें और उसको आराम और आसाइश पैदा करें, उसके लिए आराम और आसाइश पैदा करें। छोड़ जाए बेचारी, कोई छोटी बच्ची हो उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, फिर देखिए क्या असर उसका करते हैं माशरे वाले, किस कदर दौड़ा 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 के रखते हैं उसको, किस कदर दलील करते हैं उसको, डांटते हैं फटकारते हैं, वैसे भी घर में बच्चों के साथ जो कुछ होता है अल्लाह माफ़ करे। आरा आसाइश पैदा करे तो वो बच्ची उसे किसको, जिसने इसको आराम आसाइश पैदा किया, जिसने इसको अखलाक सिखाया, तो बच्ची उसे दोज़ख़ की आग से बचाएगी। रसूलुल्लाह कह ये बच्ची उसे दोज़ख़ की आग से बचाएगी। जब आप तरबियत याफ्ता हो जाइएगा तो आप तरबियत याफ्ता होने के बाद क्या काम कीजिएगा, आप बख्शिश कराइएगा दूसरे लोगों की भी। वैसे भी एक एक मोमिन जो है 100-100 लोगों की शिफात करेगा, वो आप तो ज़्यादा लोगों की शिफात कीजिएगा क्योंकि आपने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद अमल किया। जब आप इल्म हासिल करके अमल कीजिएगा तो उसका सवाब आपको बहुत मिलेगा। सवाब मिलेगा तो ये होगा, तो वो क्या हो, ये होगा कि उसको खरी के अंदर सिखाइए। इसीलिए पहला मदरसा जो है माँ की गोद का, माँ की गोद से खबर तक इल्म हासिल करो, तो माँ की गोद तो यहाँ चौपट हो गई, चौपट हो गई, बर्बाद हो गई माँ की गोद। ड्रामा देख देख के, फिल्में देख देख के, आपस में बातें कर कर, कि कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छी औरत किसी से दोस्ती नहीं की आगे कोई अच्छी बात बताए, क्योंकि इस वक्त टाइम ही नहीं, क्यों क्या बात करें, इतनी देर बैठेंगे क्या बात करेंगे, बात करेंगे जो बात आएगी तो बात करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका हदीसें आ रही, हदीसें बहुत हसीन तरीन चीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। जब बच्चा बोलने लगता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ बोलता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। जैसे कोई अजीज रिश्तेदार आता है, बेटा सुनाओ जरा, हमारा बेटा क्या कह रहा है, सुना सुना, अरे चुके चुके लेकिन ये सिखाया गया। हमारे एक दोस्त हैं यही मदरसे में, उनके छोटा बच्चा आता रहता है यहाँ, काम वाम करके जाता, बड़ा हो गया तो छोटा था, तो मैं उसके यहाँ ज़्यादा उसको सिखाता, इल्म ज़िंदगी है, जहालत मौत। बार 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 कहते, फिर सीख गया था, बोलने लगा, फिर कहते इल्म ज़िंदगी है, तो हम कहते जहालत मौत, यूँ करके मैंने तो उसने इसको ऐसा रट लिया था कि जहाँ कहीं भी जाता था कहते, उसके बाप कहता बेटा सुनाओ, वो इल्म ज़िंदगी है और जहालत, अब ढूंढ रहा होता कोई चीज़ कहाँ हाथ मारूँ मैं, हाथ मारने के लिए ढूंढ रहा होता। तो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, हर चीज़ अच्छी चीज़ है सिखाई तो उससे वो बात बनती है। तो कहा जा रहा है कि रसूलल्लाह कह रहे हैं कि जो शख्स अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलता है, तहसील इल्म, तालीम हासिल करने के लिए, तहसील इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो 70,000 मलाइका उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, उसके साथ 70,000 मलाइका, यकीन करो 70,000 मलाइका तुम्हारे साथ निकल के यहाँ तक आए होंगे, यकीन तो करो। कब तक की क्लास है यही नहीं पता, हम बोलते जा रहे हैं, पता चला है हो गया क्या, कितने बजे हो गए, हैं 4 बजे तक है,
नहीं
मेरे पास दस कुछ पता नहीं क्या,
और जो पहली
टाइम
तो 3:30 तक
होता है, 3:30 तक
मैं पता करती हूँ कि आया
सलाह नहीं आनी
है।
हाँ देख लीजिए, खूब देर से आइएगा, जब तक जल्दी नहीं सुन लीजिए। जो शख्स अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो आपने देख लिया कि 70,000 फरिश्ते होते, 70,000 फरिश्ते यकीन जानो होंगे, होते हैं। तुम समझ रही होती हो कि तुम मजलिस के फर्श पे आती हो, मजलिस के फर्श को बोसा देते हैं, अम्मा जहरा यहाँ बैठी हुई मजलिस के फर्श को बोसा देते और दूसरे क्या करते हैं, आप पे लानत भेजते हैं, उनको पता नहीं है, जो जानता है वो ये करता है। इसलिए आप जानती हैं, आपको बता दिया गया है, आपको सब इल्म दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप उसी शौक से उसी तरह से कीजिएगा कि 70,000 फरिश्ते, हाँ वाकई 70,000 फरिश्ते, 4 तक सुभान अल्लाह जीत रही। 2 हदीस सुना देंगे, 2 हदीस सुनाते हैं आपको, बेहतरीन 2 हदीसें सुनाते हैं। बहुत अच्छी, सुनिए। कोई बंदा इल्म हासिल करने के कस से इरादा जैसे करता है, नालायन नहीं पहनता, कपड़ा जेबतन नहीं करता, मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता उसके हर कदम पे तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह कह रहे हर तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अभी आपने कपड़ा बदला, नालैन पहनी, कपड़ा बदला, पैर बाहर भी नहीं निकाला घर से कि आपने जैसे सारे गुनाह आपके माफ़ हो गए जब आप अभी निकल के आई थी। इतनी फजीलत है इसकी, जैसी निगाह पड़ती है वालदैन के चेहरे के ऊपर रुक गए तो कुछ कह रहे हैं, अब समझिए कि हम कुछ कह रहे हैं। यकीन जानो जो मोहम्मद आले मोहम्मद ने कह दिया वही होता है। खाने काबा की तरफ देखना है इबादत, कुरान की तरफ देखना, इमाम आदिल की तरफ देखना और वालदैन की तरफ तो वो भी इबादत। बीवी बुरा मान ली थी, अब क्या करें, कितनी फजीलत है। अल्लाह के रसूल 100 दफ़ा देखे तब भी कहें हाँ अल्लाह इससे ज़्यादा दे सकता है, इससे ज़्यादा देगा। क्या समझते हो हम लोग वाले, अगर ये बात रटी होती कि वालदैन की चेहरे की तरफ देखना है इबादत तो क्या होता, सर पीटता पीटते हैं लोग जो जानते हैं वो कि हमारी माँ चली गई अब क्या होगा। क्या पहले देखते थे अब्बा को देखते चेहरा देखते सलाम करते थे, मुँह चूमते थे, हाथ चूमते थे, खुश होते थे कि हमारी माँ है हमारी माँ। आज माँ कैसी है? अफसोस है मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वालों पर कि जो नहीं पढ़ते, जो नहीं सीखते, जो नहीं सीखा होता वो कुछ नहीं करते, जिसके वजह से ये होता है। आखिरी एक लाइन सुनती जाइए बस, ये हमारी हजरत थी कि शुरू में सुनाएंगे लेकिन रह गई और ज़रूरी लाइन है। हजरत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का उस बंदे पर अजीम तरीन एहसान है, ये वाली चीज़ सुन रहे हैं। क्या एहसान है आपके ऊपर अल्लाह का? अल्लाह का किसी बंदे पर एहसान अजीम तरीन, मौला कह रहे हैं अजीम तरीन एहसान है। क्या? इल्म, सबसे पहली चीज़ याद है कि ये अल्लाह का अजीम तरीन एहसान है। इल्म, अकल, हिकमत और अदल। अगली दफ़ा हम आएँगे तो आप पूछिएगा कि क्या है इल्म तो समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत आपने समझाया, अकल क्या है तो बताएंगे अकल क्या है, थोड़ी एक एक लाइन बताएंगे। अकल का तो बाप बहुत बड़ा, पूरी क्लास चल सकती है माशाल्लाह। हिकमत और अदल क्या कुछ, अकल अदल और हिकमत अदल, समझ गए आप? इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें करेंगे। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आलम।